लग रहा प्रत्येक घर में प्रतीक्षा करते हैं तो होने के परम पर उनके पास नहीं रहने से अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई अब इधर से कठिन समितो चलो उधर, तो तरह तरह की बात है। ये तो मैं बहुत स्थूल उदाहरण रख रही हूँ, लेकिन हम लोगों की दशा जो भीतर से है वो मुझे साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट का चित्र अभी दिखाई दे रहा है कि इधर झुके तो इधर से खींच गए, इधर झुके तो इधर से खींच गए। तो आज अब क्या करना चाहिए कि हम सब लोग एक ऐसे स्तर पर बैठे हैं कि जहाँ से अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, ऐसे स्तर पर बैठे हैं। संत के संपर्क से, भगवत कृपा से, जीवन के मंगलमय विधान से बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि शांति, मुक्ति और भक्ति के बिना परित्राण नहीं है। तो अब क्या करना चाहिए कि अपने पर अपनी कृपा करें और अपनी महिमा आप स्वीकार करें। मनुष्य के जीवन की बड़ी भारी विशेषता है कि कितने दिनों की पुरानी फंसावट क्यों न हो, अगर उसे वर्तमान में सूझ गया है कि अविनाशी जीवन ही प्राप्त है और नाशवान की ओर से अपने को हटा लेना ही मौलिक उपाय है, इस बात को जान लेने के बाद, बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेने के बाद और अपने द्वारा सही स्वीकार कर लेने के बाद, अब हम भाई बहनों को अर्थात मानव मात्र साधकों को पशु की भांति दोनों ओर झूल न देनी चाहिए। थोड़ा सा अपने पर जोर डालने से जो लगाव केवल संकल्प के कारण बन गया है उसको टूटने में देर नहीं लगती, और वो टूट जाता है तो जो लगाव सत्य है, सनातन है, कभी छूटता ही नहीं, कभी मिटा ही नहीं, कभी टूटेगा ही नहीं, तो वो बिल्कुल ही प्रत्यक्ष और स्पष्ट हो जाता है। तो फंसे हैं हम लोग किस में, तो उस मिथ्या लगाव में जो कि कभी भी यथार्थ रूप में जुटा नहीं। संसार की ओर का आकर्षण जो हम लोगों का है वो भ्रम के आधार पर है। वस्तुतः संसार की वस्तुओं से मेरा स्ट्रक्चरल रिलेशन कभी नहीं हुआ, रचना की दृष्टि से इसके साथ लगाव कभी नहीं हुआ। केवल मैंने अपने को थोड़ा सा ढीला कर दिया और अविनाशी जीवन जो है उसकी ओर से थोड़ी आँख बंद कर ली, और इसका जो थोड़ी देर का क्षणिक सुखद आभास है उसको मैंने स्वीकार कर लिया, तो मेरी स्वीकृति से उसका लगाव बन गया। तो इसको मैं फंक्शनल रिलेशन कहती हूँ, क्रियात्मक संबंध बन जाता है और ज्ञान के प्रकाश में तत्काल ही ये संबंध टूट करके सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और जो जिसके साथ जातीय एकता है, नित्य संबंध है, आत्मीय संबंध है, वह जो सत्य तत्व है, नित्य तत्व है, परम प्रेमास्पद परमात्मा है, उसके साथ जो अपना लगाव है, खिंचाव है, वो बनाया हुआ नहीं है, उत्पन्न किया हुआ नहीं है, मेरी बहादुरी का परिणाम नहीं है, वो स्ट्रक्चरल है, बनावटी में है, रचना के आरंभ से ही है। तो जब ये अहम रूपी अणु अथवा मैं उसकी ओर से आंख बंद करके उससे अपने को छुड़ा करके जिससे नित्य संबंध नहीं है उसको पकड़ने की चेष्टा में लग गए, तो दीनता, अभिमान, अपमान, सम्मान, सुख और दुख, संयोग और वियोग, जन्म और मृत्यु, इसमें फंस गए। लेकिन इसी वर्तमान घड़ी में अगर हम सचमुच सत्संगी हैं और सत्संग के प्रभाव से सदा सदा के लिए दुख निवृत्ति चाहते हैं, तो यहीं पर बैठे ही बैठे हम लोगों को भीतर भीतर इस बात का फैसला ले ही लेना चाहिए कि जो संबंध निभि ही नहीं सकता, सदा के लिए अलग ही है, केवल मेरे संकल्प से ही बन गया है, छोड़ देने से छूट जाएगा, उसको आज ही इसी बैठक में यहीं पर छोड़ करके ही हम लोगों को उठना चाहिए। ऐसा ऐसा बनावटी है स्नायु मंडल की क्रियाओं में हम बढ़ा करते थे कि एक यूनिट का स्नायु है, दूसरे यूनिट का स्नायु है, तो दोनों कभी जुटे हुए नहीं होते हैं, अलग अलग पास पास में पड़े रहते हैं ओवरलैपिंग कंडीशन में एक दूसरे से ऐसे। और जब कोई संवेदना बाहर से भीतर मस्तिष्क की ओर ले जानी होती है तो संवेदना का भेद एक में से दूसरे में जाता है तो क्रियात्मक संबंध दोनों में बन जाता है और काम खत्म हो जाता है तो फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ऐसे ही शरीर और संसार के साथ हमारा लगाव रहता नहीं है, पहले भी नहीं था अब भी नहीं है, लेकिन जब मेरे भीतर कोई संकल्प उठता है तो वो संकल्प मुझको शरीरों को संसार की वस्तुओं के साथ जुटा देता है और वो संकल्प खत्म हो गया तो साथ छूट गया। ऐसे मेरे संकल्प में है कि मैं अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची सच्ची सच्ची बातों को सुंदर ढंग से कह करके भाई बहनों को सुनाऊं, तो मेरा ये संकल्प जो है वो मेरी वृत्ति को ये स्वर यंत्र के साथ जोड़ देती है। तो मैं बोल रही हूँ, आपके सुनने का संकल्प है तो स्वभाव से तो आप अपने आप में ही है, स्वभाव से तो आप अपने अविनाशी स्वरूप में ही है, लेकिन बोलने और सुनने की क्रिया के संकल्प से जैसे मेरी वृत्ति जुट गई स्वर यंत्र के साथ, ऐसे ही आपकी वृत्ति जुट गई है ध्वनि यंत्र के साथ। तो कहना सुनना हो रहा है, कहना समाप्त हो जाए और उसके साथ असंगता आ जाए तो तुरंत ही सारी वृत्तियां सिमट करके भीतर ही जाकर अपने उद्गम से जुट जाए, उसको कहते हैं नित्य योग। अपने परम प्रेमास्पद के प्रेम भाव में लीन हो जाए तो उसको कहते हैं भक्ति योग। और सुनने का काम खत्म हो गया, आपने सुन लिया कि शरीर और संसार के साथ मेरा नित्य संबंध नहीं है, आवश्यकता के अनुसार संबंध बन जाता है और काम खत्म होने से संबंध टूट जाता है, इसको अगर हमने स्वाभाविक बना लिया तो सारी वृत्ति सिमट करके अंतर्मुख हो जाएगी। और सुनने के बाद न सुनना, बोलने के बाद न बोलना, काम करने के बाद कुछ न करना, अप्रयत्न होकर अहंकृति रहित होकर नित्य तत्व से नित्य योग में परमानंद पाना, बहुत ही स्वाभाविक वैज्ञानिक दार्शनिक और आस्तिक दृष्टि से सच्ची बात है जीवन की। तो जीवन में रस घटता है कब, जब बाहर बाहर उसको खर्च करने लगते हैं तब, और भीतर भीतर रस बढ़ता है कब, जब अपने को उस रस के अथाह सागर से जोड़ देते हैं तब। इतनी सी बात है, तो जो कभी न घटने वाला रिजर्वायर ऑफ लाइफ है, रिजर्वायर ऑफ लाइफ है, उसमें से जिंदगी कभी घटती नहीं है, उसमें से रस कभी घटता नहीं है, उसमें से सामर्थ्य और प्रकाश कभी घटता नहीं है, तो उसी से उसी में से हम लोग निकले और उसके साथ अपना तार कभी टूटता नहीं है, संबंध कभी टूटता नहीं है, केवल मेरी दृष्टि उस पर नहीं है, तो उसमें जो रस प्रवाहित हो रहा है उसकी मधुरता, उसका मिठास अपने स्वाद में नहीं आता। अपने स्वाद में क्या आ रहा है? मैं बड़ा भगवान हूँ, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा बलवान हूँ, मैं बड़ा बढ़िया साधक हूँ, मेरा भजन बढ़िया चलता है, मैं बड़ा मुद्दानंदी हूँ, मैं बड़ा जपी हूँ, मैं बड़ा सती हूँ, मैं बड़ा त्यागी हूँ, मैं बड़ा सेवक हूँ। ये उसकी विमुखता की दशा है, ये चल रही है। तो इसमें रस घट जाता है। मैंपन जो है, मैं बड़ा ऐसा हूँ, तो ये मैंपन का आभास अहम का अभिमान कहलाता है। तो इससे थोड़ी कठोरता आ जाती है और सख्त हो गया तो उसमें रस का संचार अनुभव में नहीं आता है। वो टिका हुआ है उसी रस पर, उस रस के बिना ये अणुओं का, सूक्ष्म से सूक्ष्म अणुओं का संगठन रह नहीं सकता। तो टिका तो है उसी के आधार पर, लेकिन शक्ति आ जाने के कारण से रस का संचार नहीं होता, रोम रस आप्लावित नहीं होता, ये घाटा लगता है अपने को। और मैंने संत कृपा से, भगवत कृपा से, संघ के प्रभाव से ऐसा जाना है कि एक बार भी साधक के भीतर उस स्वरस के संचार का अनुभव हो जाए तो दुनिया के सब रस फीके हो जाते हैं। होता है ऐसा, साधन काल में होता है, सिद्धि की बात मैं नहीं जानती। जीवन पूर्ण हो जाए, साधना पूर्ण हो जाए और साधक अपने साध्य से अभिन्न हो जाए, तब तो वो कुछ कहने सुनने की दशा में रहेगा ही नहीं। वो बात मुझे नहीं मालूम है, मैं तो अभी बोल रही हूँ और नया नया प्रोग्राम बोलने का बना रही हूँ। न बोलना, उसमें जाकर के डूब जाना, समाप्त हो जाना सब प्रकार की साधना, साध्य में समाहित हो जाए, वहाँ की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मैं साधन काल की बात कर रही हूँ कि अगर दृष्टि बदल गई होती तो आपके शांति काल में ये अनुभव में आ जाता कि जब बाहर से हम अपने को समेट लेते हैं तो अपने ही स्वमेव से उस रस का संचार होता है जो कि मन को, तन को, इंद्रियों को, बुद्धि को, अंतर और बाह्य सब कर्मों को बिल्कुल भरपूर कर देता है। और उस रस का आस्वादन एक बार ही हो जाए तो फिर दुनिया का कोई रस उसके आगे कुछ नहीं लगता। ऐसा होता है। आनंद मिराज मीरा जी कहती है, भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मुझे तब नंद की, मुझे लाल जगन हरि चरणन की, प्रभु की प्रीति, प्रभु की भक्ति। एक बार उसने रस से सराबोर कर दिया तो फिर दुनिया दिखेगी भी नहीं, और दिखेगी भी तो उसने अपने प्यारे से अतिरिक्त और कुछ मिलेगा भी नहीं। तो मेरा ऐसा विश्वास है और मैं अपने परम आत्मीय प्रभु के नाते बड़े घनिष्ठ संबंधी आप सभी मेरे हैं, तो आप सभी आत्मीय भाई बहनों की सेवा में यह निवेदन करके विश्वास दिलाना चाहती हूँ मैं कि सचमुच जो आप ही में विद्यमान है उसके प्राकट्य में संदेह मत रखें। बहुत अच्छी बात है, संदेह रखिएगा तो कभी वो पर्दा खुलेगा ही नहीं। संदेह मत रखिए। बाहर में जिसको जो कुछ मिल गया है उस पर आस्था मत रखिए। मिला हुआ दिखाई देता है किसी भी समय में खत्म हो सकता है। तो जो बाहर बाहर दिख रहा है उसमें आस्था मत रखिए, और जो भीतर भीतर है और कैसे प्रकट होता है, कैसे उसका अनुभव होता है, तो स्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा और बहुत ही सच्चा उपाय लोगों को बताया कि भाई वह अनमोल आनंद प्रेम और जीवन का खजाना जो है वो खुलता है कैसे, कुछ नहीं करने से। व्रत करो, उपवास करो, दान करो, काम करो, तीर्थ यात्रा करो, जो भी कुछ करना है करो 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 करो, ठीक है, करते करते न करने की घड़ी आनी चाहिए। तो बाहर की सारी वृत्तियां सीमित करके बाह्य इंद्रियों की, अंत की, ज्ञानेन्द्रियों की, कर्मेंद्रियों की सारी वृत्तियां सीमित करके भीतर एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है, वहां से अपने उद्गम से जुट जाती है। तो कब जाकर के जुट जाएंगे, कब ये सीमित अहम उसमें जाके विलीन हो जाएगा, ये तो प्रभु का मंगलमय विधान जाने, हमारी तैयारी तो पूरी होगी। लेकिन आज जिस समय आप संसार के कार्य के इंतजाम के धुन में लगे हुए हैं, इस बीच में आप इस बात को याद रखिए कि ये सब जहाँ के तहाँ जैसे के तैसे जो करते हो बना रहेगा, संसार का कुछ नहीं बिगड़ता है मेरे बिना। लेकिन इसी के भीतर थोड़ी थोड़ी देर के लिए शांत रहने का स्वभाव बनाया जाए, संपूर्ण जीवन की सारी गतिविधि उस एक लक्ष्य पर केंद्रित की जाए कि मैं सांस ले रही हूँ तो इस बात के लिए कि हम मिथ्या लगाव में से अपने को छुटा लेंगे, और जो मेन रीजन वायर ऑफ लाइफ है, मेन स्प्रिंग ऑफ लाइफ है, जो जीवन का मूल स्रोत है, जो आनंद का अथाह सागर है, जिससे मेरा संबंध कभी टूटा ही नहीं, मुझे उसी के सन्मुख होने की बात है। तो विमुखता काल में मिट्टी पलीद हो जाती है, और सन्मुखता काल में सिद्ध होने से पहले ईश्वरीय विभूतियाँ आपके भीतर ही भीतर प्रकट हो करके आपको बलिष्ठ बनाती चली जाती है, शांति आती जाती है। और प्रियता के रस को तो क्या कहूँ, उसका एक ही कण जब सारे संसार को संभालने के लिए प्रयास है, तो हमारे जैसे तुच्छ को एक कण ही मिल जाए तो वही संभाल पाएंगे, बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा आनंद रहेगा। वह मेरे जन्म जन्मांतर के ताप को, अतृप्ति को भर करके और ऐसा बना देगा, ऐसा बना देगा कि जैसी भी हमारी कल्पना में भी नहीं आ सकता है। तो रस स्वरूप जीवन है, और रस के अभाव में हम कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, इसी विडंबना को मिटाना है। संत कबीर ने एक पद लिखा है, उसने ये लिखा है, पानी बिसुनी न पियासी, मोहे सुनी सुनी आवे हांसी। रस स्वरूप परमात्मा में से उद्भूत हुए हम, रस स्वरूप परमात्मा में स्थित हैं, उन्हीं के द्वारा सुरक्षित पालित संचालित हैं, और रस के अभाव में कहाँ कहाँ क्या क्या करते फिर रहे हैं। तो इस दशा को मिटाना हम लोगों के लिए आवश्यक भी है और स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम उससे बिछुड़ गए हैं, उस रस स्वरूप परमात्मा से हम बिछुड़ गए हैं। ये सत्य नहीं है, ये भ्रम जी, क्योंकि बिछुड़ जाते तो हमारी सत्ता ही नहीं होती, वो सत्ता तो है वो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेटर होता है तो कहीं पर बल्ब जल रहा हो तो उसका कनेक्शन कट जाएगा तो रोशनी बुझ जाएगी रहेगी नहीं। तो जो हमारा जनरेटर है जनरेटर ऑफ लाइफ है ना, सब सब यूनिट उसी में से जनरेट होते हैं तो उससे एक बल के लिए भी कनेक्शन कट जाता तो हमारी सत्ता खत्म हो जाती, अस्तित्व ही नहीं रहता। तो किसी काल में उससे कनेक्शन टूटा नहीं है और कभी नहीं टूटेगा, वो टूटने वाला है ही नहीं है। तो जिधर जुटा हुआ लग रहा है वो 100% कोरा धर्म है और जिधर से लगा हुआ है वो 100% सत्य है। तो परमात्मा से संबंध कभी टूटा नहीं, मिटा नहीं, छूटा नहीं, छूटेगा नहीं, वो तो छोड़ते ही नहीं है, वो कैसे छोड़ेंगे। और स्वामी जी महाराज अपनी शानदार पर्सनैलिटी के प्रभाव में आकर आ जाते तो कहते कि परमात्मा की हिम्मत नहीं है कि हमारे से संबंध तोड़। और शानदार पर्सनैलिटी थी ना तो वहां भी अपनी शान लगाते कि उनकी हिम्मत नहीं है कि हमारे से संबंध तोड़ ले, उनकी उनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी करुणा की गोद से निकाल कर हमको फेंक दे। अगर ऐसा कर सकते तो अनंत माधुर्यवान क्या विशेषण उनका खत्म हो जाएगा। अनंत माधुर्यवान किसको कहते हैं, जो जो केवल अपने स्वभाव से ही पतित से पतित को भी अपनी करुणा से संभाल करके रखता है। तो हम पतित से पतित हो सकते हैं लेकिन उनके अनंत माधुर्यवान की विशेषता जो है उसको वे खत्म नहीं करेंगे। तो यह जो जीवन का सत्य है वो वस्तुतः कैश पेमेंट के समान है। आंख बंद करेंगे कि कान बंद करेंगे कि एकांत में घुसेंगे कि साउंड प्रूफ रूम बनाएंगे कि पहाड़ की गुफा में जाएंगे, ठीक है, जिसकी जिसके लिए जो जरूरी होगा वो तो मंगलमय विधान से ही परिस्थिति वैसी बनती जाएगी, उसके लिए अपने को कुछ सोचना नहीं है। और स्वामी जी महाराज की करुणा देखिए कि वो कहते थे समय समय पर कभी कभी कि देवकी जी अल्प समय है, अल्प आयु है, अल्प सामर्थ्य है, अगर वृंदावन आश्रम से सत्संग भवन में बैठा हुआ साधक बिल्कुल ही फ्री होकर के यहाँ से न उठे तो क्या सत्संग हुआ। अगर उसके सामने ये प्रश्न आ जाए कि भाई जिस तुम जिस घर में माया मोह के घेरे में बैठे हो तो उसको छोड़ करके बिल्कुल एकांत में जा करके एकांत चुटिया बना के बैठोगे नहीं तो सत्य नहीं मिलेगा। तो जब तक इस परिस्थिति के चिंतन में वो पड़ा है कि कैसे कैसे इंतजाम करें, इसी बीच में सांस फूट गई तो मामला बिगड़ जाए ना। तो स्वामी जी महाराज बाह्य परिस्थितियों से संभालने की बात को दूर छोड़ दो, अप्राप्त परिस्थितियों के चिंतन में भी हम लोगों का समय खराब करना पसंद नहीं करते। अरे भाई सत्य का शोधक, अरे भाई प्रभु का शरणागत अप्राप्त परिस्थितियों के चिंतन में फंस जाए तो जितनी देर उस चिंतन में फंसेगा कि ऐसे इंतजाम करेंगे, बेटे से कह देंगे इतना रुपया महीना हमको भेज देगा गीता भवन में, वहाँ एक कुटिया बना लेंगे, ऐसे बैठेंगे तो क्या जाने ये परिस्थिति आएगी कि नहीं आएगी, इस परिस्थिति के चिंतन में हम उस रस स्वरूप रिजर्वायर ऑफ लाइफ से बिछुड़े हुए रह गए, परिस्थिति के चिंतन में रह गए तो उससे बिछुड़ गए कि नहीं, विमुखता हो गई ना, नाता टूटा नहीं लेकिन मेरी वृत्ति तो उधर से हट गई। किस बात में लग गई कि चलो मानव सेवा संघ में आश्रम के मंत्री जी से आनंद नारायण जी से बातचीत करेंगे, एक प्लॉट मांगेंगे, एक मकान बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, आके बैठेंगे। तो जिसके जिसके चिंतन, जिसके संबंध, जिसकी प्रियता का संदेश यहाँ बैठ करके दिया जा रहा है, वह अपने ही में विद्यमान अपना परम प्रिय मेरा, उससे मैं विमुख हो गई और अब परिस्थिति को संवारने में चिंतन लग गया, चिंतन लग गया। क्रिया पूरी होगी कि नहीं होगी कौन जानता है। मानव सेवा संघ ने अर्थात स्वामी जी महाराज ने साधकों की अल्प सामर्थ्य और अल्प आयु का ध्यान रख करके बहुत चेष्टा की इस बात की कि आपके भीतर जो सत्य विद्यमान है उसकी सरलता को अनुभव करने के लिए आप परिस्थितियों के फेर में मत पड़िए, और चेष्टा की है। अब दोनों ही बातें हैं, परिस्थितियों के फेर में पड़ने पर भी आदमी सत्य के विद्यमान होने का अनुभव कर लेता हो, ये भी गलत बात है, और परिस्थितियों के चिंतन में पड़ जाएगा तो उतनी देर के लिए उसकी विमुखता हो जाएगी, इससे भी घाटा लगेगा, और परिस्थिति बनेगी कालांतर में, समय लगेगा, शक्ति लगेगी, इस बीच में अगर सांस टूट गई तो प्रोग्राम ही बाकी रह जाएगा। इसलिए मानव सेवा संघ की साधन पद्धति में भीतर में विद्यमान शक्ति की अभिव्यक्ति को बाहर की किसी भी परिस्थिति से जोड़ा नहीं गया। बहुत जरूरी बात है, और मानव सेवा संघ के कार्यकर्ता भी विद्यमान है, साधक भी विद्यमान है, टेलीविजन भी विद्यमान है, और दूसरे लोग पूछते हैं, नगर नगर में आप जाएंगे, अलग अलग शाखाओं के कार्यकर्ता आए हैं, तो आप लोगों के सामने ये प्रश्न भी आता रहता है कि भाई मानव सेवा संघ के बारे में बताओ, हम जानना चाहते हैं क्या है, कैसा है। तो खुद अपने को हल्का रखने के लिए भी जरूरी है इस बात को ध्यान में रखना, और दूसरे परिस्थितियों के फेर में पड़े हुए कि कब फुर्सत मिलेगी, कब परिस्थिति जुटेगी, तो अखंड पाठ करवाएंगे कि ऐसी कथा कराएंगे कि वहां जाके यज्ञ करेंगे कि वहां जाके बात करेंगे, इस तरह की प्रवृत्तियों में लगे हुए और शक्ति को इन प्रवृत्तियों पर आधारित करके इनकी परिस्थिति के चिंतन में होकर के सत्य से विमुख हुए साधकों को सलाह देने की भी जरूरत पड़ती है। लोग पूछते भी हैं, आपकी जानकारी है, आपकी नोटिस में ये बात रहनी चाहिए। स्वामी जी महाराज ने स्वस्वरूप में ही जो विद्यमान है उसकी अभिव्यक्ति को बाह्य परिस्थितियों के साथ नहीं जोड़ा, और उसके सब आधार है। क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि ये अनावश्यक है। क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि ये हानिकारक है। दोनों ही बात है, जरूरत भी नहीं है, नुकसान देने वाली बात भी नहीं है। इसलिए आप सभी भाई बहन इस बात पर पूरा ध्यान दीजिए कि साधन काल में जिस दिन से आपने स्वामी जी महाराज की सलाह मानकर प्रभु से आत्मीय संबंध को स्वीकार किया, उसी दिन से अहम रूपी अणु में परिवर्तन आरंभ तो हो गया, लेकिन उसमें इतनी सजीवता आ जाए कि उनकी उपस्थिति के अनुभव से हम सब निश्चित हो जाए, निर्मल हो जाए, रस से सरफ हो जाए, इस बात की आवश्यकता भी अनुभव करनी चाहिए, और जो जहाँ है वहीं पर इस दिशा में प्रयत्नशील भी हो जाना चाहिए। किस बात का प्रयत्न? क्रिया और अभ्यास का प्रयत्न नहीं, जो फंक्शनल रिलेशन है, केवल क्रियात्मक संबंध है, केवल संकल्प मात्र से जिससे संबंध जुड़ जाता है उसको तोड़ दे, और जो सदा सदा का संबंध है उसको सजीव करने इसी इसी विषय को दृढ़ करने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए, धारण करने के लिए व्यक्तिगत सत्संग और मुख सत्संग की चर्चा हो रही है। तो प्रश्न में ये लिखा गया है कि क्या व्यक्तिगत सत्संग और मुख सत्संग दोनों एक ही हैं? यदि दोनों भिन्न हैं तो उनका स्वरूप स्पष्ट करें। तो दोनों एक नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुटे हुए तो हैं। मुख सत्संग का अर्थ होता है सब प्रकार से अप्रयत्न होना, और व्यक्तिगत सत्संग का अर्थ होता है कि सत असत पर विचार करके मुख सत्संग में प्रवेश पाना। तो दोनों इकट्ठे शुरू किया जा सकता है। पहले बैठ करके व्यक्तिगत सत्संग करें, अपने द्वारा इस अपने निर्णय को दोहरा करके उसका प्रभाव अपने पर आने दें कि मेरा नित्य संबंध केवल परमात्मा से है। केवल शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मेरा नित्य संबंध केवल परमात्मा से है, और वो संबंध सदा सदा से है और सदा सदा तक रहेगा। आज मुझको उस संबंध के सरस अनुभव से वंचित रहना पड़ा तो इसको मिटाना है। तो कैसे मिटाए? अपनी ओर से सब प्रयास कर लिया, इस बात का अन्य विश्वासों का त्याग कर देंगे, अन्य संबंधों का त्याग कर देंगे, अपना कोई संकल्प नहीं रखेंगे, और जिन परम प्रेमास पर समर्थ स्वामी के हवाले मैंने अपने को किया है अब उन्हीं के होकर रहेंगे। तो इन सब बातों को याद करना ये व्यक्तिगत सत्संग के भीतर आएगा, और ये सब याद कर लेने के बाद हे समर्थ स्वामी मैं आपकी शरण हूँ ऐसा कह करके अपने को कुछ देर के लिए बिल्कुल छोड़ देना, ये मुख सत्संग के भीतर आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ करके चलाना अच्छा ही है कि व्यक्तिगत सत्संग के द्वारा हम सब बातों को याद कर लिया, एक बार अपने भीतर विचार करके दृढ़ कर दिया उनको, और फिर उसके अनुसरण में अपने को छोड़ दिया। तो निर्मन होकर, निष्काम होकर प्रभु के आत्मीय संबंध को याद करके स्वीकार करना तो एक ही बार होगा, बारंबार स्वीकृति की कोई बात ही नहीं है। तब याद कर लेना होगा उसको, याद करके फिर उनकी शरण में अपने को छोड़ करके बिल्कुल अबोध बालक की तरह उनकी कृपा की प्रतीक्षा में पड़े रहो। तो कृपा तो हो रही है, पहले ही से हो रही है, संभाल करके ही रख रही है। दो तीन बार ऐसा अनुभव में आया। एक बार हम लोग स्वामी जी महाराज के साथ साधवी मुख थे, हम और दो तीन सज्जन और थे, हम सब लोग गए थे एक जगह पर सत्संग में, 12 वहाँ पर एक शाखा है अभी भी है। तो सत्संग में हम लोग गए थे, तो क्या हुआ कि वहाँ जाने पर पता चला कि कुछ इलेक्शन इलेक्शन का झगड़ा उगड़ा हो गया है और हलचल मची है नगर में। तो संत थे वहाँ पर, वो इंतजाम करते थे, वो रिसीव करके स्वामी जी महाराज को जगह पर पहुंचा करके वहाँ से गायब हो गए, नगर में चले गए। तो घर घर में जाकर उन्होंने कहा कि भाई देखो संत आए हैं, तुम्हारे यहाँ सत्संग का कार्यक्रम है, अब ये जो हलचल मची है, घबराहट और अप्रियता हो गई है, तो पछताओ मत, घर में बैठो मत, चलो सब सत्संग में जाओ, संत के दर्शन करो, सत्वचन सुनो, तो शांति मिलेगी। तो घर घर में घूम घूम करके लोगों के हारे हुए पुलिस को जिंदा कर दिया, और 8 बजे सत्संग का कार्यक्रम था, तो लगभग 10 बजे सारा समूह जुट गया, खूब बड़ी सभा जुट गई, बढ़िया से अब आरम्भ होने वाला था कार्यक्रम। तो स्वामी महाराज ने मुझे बुलाया कि आओ। वो बड़ा ऊंचा स्टेज था, इतना कि पांव चढ़ा कर उस पर बैठना थोड़ा कठिन हो रहा था, और देर भी हो गई थी अब नया इंतजाम करने के लिए। मैंने कहा भी नहीं कि क्यों ला करके यहाँ रखो तो मैं ऊपर चढ़ूं। मुझसे खड़ी थी, मेरे पास साधवी भी खड़ी थी, और इन दोनों के बीच में से ऐसे करके टांग उठा के किसी तरह से ऊपर में चढ़ी, और जो वो ऐसा बैठने की चेष्टा करने लगी किनारे किनारे बैठ रहे थे तो पैसे नहीं गया, मोटा मोटा गद्दा बिछा था चौकी की तरह दिखा, लेकिन उसके नीचे सहारा नहीं था, ऐसे में बैठी लग गई तो लुढ़क गई। तो शरीर जो है वो जमीन को छुआ नहीं, ऐसा जैसे कि नीचे से यूं करके किसी ने उठा दिया हो, तो झट से ऐसे गोल हो करके ऐसे लुढ़की और एकदम गोल करके उठ के मैं खड़ी हो गई। लड़कियों ने पकड़ लिया मुझको, आए दीदी के लिए देखिए, हमको तो लगा ही नहीं कुछ, ऐसे पीठ में कमर में टांग में कहीं भी नहीं लगा कि ऐसे जमीन पर छुआ, छुआ ही नहीं, स्पर्श ही नहीं हुआ, ऐसे करके नीचे से जैसे किसी ने हाथ लगा के उठा के खड़ा कर दिया। तो हर कोई बात ही नहीं, बड़े आनंद में फिर इन लोगों को पकड़ करके इनके सहारे फिर ऊपर चढ़ गई, चढ़ के बैठ गई, सत्संग हो गया। हम भी महाराज नहीं हंस रहे थे, सब लोग हम लोग हंसते ही रहे, फिर कई बार खत्म। तो हमने सोचे कि कैसे हुआ इतने ऊंचे पद से गिर करके और जमीन का स्पर्श हुआ ही नहीं, हो गया हो गया है कई बार। काफी दिनों के बाद धीरे 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 थोड़ा थोड़ा भीतर से जब विश्वास बढ़ता है, भीतर से जब निष्ठा बढ़ती है, तो घटनाओं में गहराई का दर्शन होता है, और नहीं तो कुछ पता ही नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे ऐसा लगा कि वो कृपा का जो सहारा है वो तो सब समय उनकी ओर से है, लेकिन कृपालु की कृपा का आश्रय जो लेता है, कृपालु की कृपा की प्रतीक्षा में जो रहता है, उसको उसका विशेष अनुभव होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो इस आधार पर मैं कह रही हूँ कि कृपा का सहारा तो अपने को सब समय है, लेकिन आप भाई बहन उस परम कृपालु की नित्य उपस्थिति में विश्वास करके थोड़ी थोड़ी देर के लिए व्यक्तिगत सत्संग में और मुख सत्संग में रहना आरंभ कीजिए, तो उनकी कृपा की प्रतीक्षा अगर भीतर से जगेगी तो वो किस प्रकार भीतर बाहर भर गई है और हमारे मैल को धो करके निर्मल कर दे रही है, इस बात का अनुभव इसी वर्तमान में आप भाई बहनों को होगा। अब थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए अपने को।